अगर सच में ऐसा नहीं है, मैं जो देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वो सब मेरा भ्रम है, तो मत जाओ कहीं, यहीं रहो मेरे साथ। कायरव के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। इनाया, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है। क्या ये कॉल मुझसे और हमारे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो? ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें जो हमारे सामने नहीं हो सकती? अगर सच में कॉल इम्पॉर्टेंट है और मेरे सामने बात नहीं हो सकती, तो जाओ, जाकर अपनी बात ख़त्म करके आओ। तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हारे फ्री होने का वेट करूंगी, क्योंकि मुझे भी तुमसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है और मेरी बात सच में इम्पॉर्टेंट है। कायरव परेशान हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इनाया ने उसे मौका ही नहीं दिया। जाओ, जाकर अपनी बात ख़त्म करके आओ, तब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कायरव कुछ देर परेशान सा उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया और पल भर के लिए अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली, आंखें इनाया की आंखों से टकराईं। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। अभी तुम फ्रेश हो जाओ और ये फिनिश करके रखना। अगर मुझे इसमें कुछ भी बचा मिला तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कायरव ने हल्की सख्ती दिखाई और जैसे ही जाने के लिए पलटा, इनाया की जिद भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं नहीं खाऊंगी, उसे छूंगी भी नहीं, फ्रेश भी नहीं होंगी। तुम जाओ अभी मुझे छोड़कर, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, और अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं खुद आऊंगी तुम्हें ढूंढने। अजीब सी जिद थी उसकी, जो कायरव की परेशानी की वजह बन गई थी। इनाया, ये कैसी जिद है तुम्हारी? मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, तुम क्यों मेरी परेशानियों को और बढ़ा रही हो? बात मानो मेरी, जो बोल रहा हूँ वो करो। नहीं करूँगी, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों इतना परेशान हो तुम? क्यों मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानती हूँ, जो रायचंद मेंशन में हुआ उसकी वजह से तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, हर्ट हो, तकलीफ में हो। जो भी है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं हूँ यहाँ। लेकिन तुम सब कुछ अपने अंदर छुपाकर ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अकेले अकेले सफ़र कर रहे हो, और यही मुझे मंजूर नहीं है। इनाया अब काफ़ी सीरियस थी। कायरव उसकी बातें सुनकर चौंक गया। इनाया सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी। कायरव ने नजरें चुराते हुए अपना चेहरा फेर लिया। इना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सच है तो यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। बताओ मुझे कि अगर सब ठीक है तो जब से हम वहां से आए हैं तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम्हारे माथे पर परेशानी की रेखाएं, आंखों में दर्द, मुस्कुराहट के पीछे छिपी तकलीफ, शब्दों के पीछे छुपी चीखती खामोशी मुझे नजर नहीं आती। अगर इसके बाद भी तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है तो ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मुझसे भी तुम ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। इनाया ने गुस्से से अपना चेहरा घुमा लिया और वहीं लेट गई। उसकी पीठ कायरव की तरफ थी, जिसकी परेशान निगाहें उसी पर टिकी थीं। अब उसे कोई फोन कॉल याद नहीं था। कायरव कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा, फिर इनाया के पास आ गया। इना, उठो, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ खाना है। कायरव ने उसके कंधे को छुआ, लेकिन इनाया ने उसका हाथ झटक दिया और ब्लैंकेट को सर तक तान ली। इना, क्यों जिद कर रही हो? अपना नहीं तो हमारे बच्चे का तो ख्याल करो। तुम जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख लूंगी, पहले भी रखती थी, इसलिए तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना था ना, तुम्हें देर हो रही होगी। इनाया ने अंदर से ही जवाब दिया। अब वो गुस्सा हो चुकी थी और कायरव ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और इनाया के सर से ब्लैंकेट हटा दिया। चलो उठो, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, इनाया खींचते हुए बोली। तिरछी निगाहों से उसे घूरा और वापस ब्लैंकेट खींचने लगी, लेकिन कायरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से बोला, इनाया बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना तुम्हें कि मुझे तुमसे बात करनी है, उठो। अगर अब तुम खुद से नहीं उठी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें उठाऊंगा, और जो कंडीशन तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे किसी भी तरह से तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो, अपनी ये जिद छोड़ दो, मेरे पेशेंस का और टेस्ट मत लो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इनाया ने नाक मुँह से कोड़ते हुए उसे नाराजगी से घूरा, फिर अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। उठाओ मुझे। कायरव उसे उठाने के लिए झुका तो इनाया ने अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। कायरव ने उसकी कमर को सपोर्ट दिया और उसे उठाकर बिठा दिया, लेकिन जब पीछे हटने लगा तो चौंक गया, क्योंकि इनाया ने उसे नहीं छोड़ा था, उल्टा उसकी पीठ पर अपनी बाहों के घेरे को कसकर उसे टाइटली हक कर लिया था। पल भर के लिए कायरव की आंखें बंद हो गईं। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त तूफान उठ रहा था। इनाया के इस हक ने उसे बिल्कुल शांत कर दिया था। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और हर्ट हो, तुम्हारे डैड ने जो किया उसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, और जो आज उनका रवैया था उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन जो किया वो सब उन्होंने किया, तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? क्यों मुझसे नजरें मिलाने से कतरा रहे हो? जब मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही तो तुम क्यों खुद को ऐसे टॉर्चर कर रहे हो? जैसे जैसे इनाया बोल रही थी, कायरव के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। इनाया चुप हुई और कायरव उसके हाथ को हटाते हुए उससे दूर होने लगा, पर इनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कायरव प्लीज इनाया, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। कायरव एक बार फिर उससे नजरें मिलाने से बचता नजर आ रहा था। इनाया के चेहरे को एक साया सा छूकर गुजरा। क्यों नहीं करनी तुम्हें अभी इस बारे में बात? क्यों तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। कायरव की आंखों में गुस्सा, शर्म और बेबसी तीनों एक साथ तैर रहे थे। उसकी जबड़े बुरी तरह भीजे हुए थे और हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बदल चुके थे। वो कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों को शब्द देने की हिम्मत जुटा रहा हो। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और इनाया की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कैसे ना ठहराऊं मैं खुद को जिम्मेदार, कैसे कर लूं नॉर्मल बिहेव? उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द उसके सीने से खिंच कर बाहर आ रहा हो। तुम भी थी ना वहां मेरे साथ, देखा ना तुमने भी उनका बिहेवियर? कहते कहते उसकी आंखों में दर्द उतर आया। वो पल भर के लिए चुप हो गया, जैसे शब्द उसका साथ छोड़ रहे हों। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है? मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। उसने नजरें झुका ली, उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। मैं बहुत एम्बेरस्ड हूं इनाया, उसने धीमी आवाज में कहा। वो मेरे डैड हैं और उन्होंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, उसकी आवाज में अब गुस्सा और दर्द एक साथ खुल चुका था। उन्हें अभी भी अपने गुनाहों का कोई एहसास नहीं है, कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं है। कायरव ने निराशा में सिर हिलाया, जैसे उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें तो ये जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उनकी वजह से इन कंडीशन में तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। अब उसकी आंखों में साफ गुस्सा चमक रहा था।
उनके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, उल्टा उन्होंने तुम्हारे कैरेक्टर पर, हमारे बच्चे पर ही सवाल उठा दिया। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। वो चुप हो गया और सिर झुकाकर खड़ा रह गया, जैसे अपने ही पिता के किए का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। कायरव चुप हुआ तो कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इनाया बस खामोशी से उसे देख रही थी। उसके डैड की इस हरकत ने इस चट्टान जैसे मजबूत इंसान को किस कदर तोड़ कर रख दिया था। कितनी तकलीफ में था वो, और सब छुपाकर भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड।